नित्य हितोपदेशी रे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अपने विचारों को अच्छी दिशा में लगाने और उन अच्छे विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए जो आचार्य भगवंतों ने 12 भावनाएं कही हैं उन पर विचार कर रहे हैं। विचारों की निरंतरता से हमारे आचरण में परिवर्तन होता है, हमारा मोह घटता है, हमारी अज्ञानता और आसक्ति घटती है। संसार बढ़ाने वाली दो ही चीजें हैं, हमारी अज्ञानता और हमारा असंयम। अधिकांश जीवन हमारा अज्ञानता और असंयम में ही व्यतीत होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दो उपाय हैं जिनके माध्यम से और हम अपने अज्ञान और असंयम से बचकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस संसार से भी पार हो सकते हैं। वो ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ते हैं 12 भावनाओं के चिंतन मनन से। इसलिए 12 भावनाएं हमारे ज्ञान और वैराग्य को भी बढ़ाने वाली है। इंद्रिय और मन ये हर संसारी प्राणी को मिले हुए हैं। मन कुछ ही जीवों को मिला है पर इंद्रियां सबके लिए मिली हुई है। और ये मन और इंद्रिय ये ऐसे द्वार हैं जिनसे कि हम शुद्ध वायु भी ले सकते हैं और अशुद्ध वायु भी ग्रहण कर सकते हैं। हमारे भाव, हमारा उपयोग जिस तरह का होता है उस तरह ये मन और इंद्रियां हमारे जीवन में सुख और दुख देने वाले कर्मों के आश्रयों में कारण बनते हैं। तो मन, वाणी और शरीर की जो सक्रियता है, जो चंचलता या कि व्यग्रता है, और मेरे अपने भावों की जो मलिनता और उज्ज्वलता है, वो ही मेरे पूरे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में कारण है। ये विचार पिछले दिनों हम सब ने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। हम चाहें तो अपने इन इंद्रिय मन या मन वाणी और शरीर की व्यग्रता को घटाएं और अपने भावों की या उपयोग की मलिनता को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और अन्यथा ये मन और इंद्रियां और हमारे अपने परिणाम ये निरंतर हमें संसार के विषय और कषाय में ही लगाए रखते हैं। तो हम चाहें तो इसी में लगाए रखें तब भी हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। पर हमने ये सोचा है कि नहीं, ये विषय और कषाय में लगे हुए इंद्रिय मन और हमारा उपयोग ये तो हमारे पतन में कारण बन रहा है। हम वहां से हट करके और इनको संभालने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हमारे मन में विचार आया? ज्ञान दीप तप तेल भर, वह जो निरंतर हमारे विचारों में हम लगातार उनको स्थिर और दृढ़ बना रहे थे, उसका परिणाम है, उस ज्ञान का परिणाम है। अब लगने लगा है कि मेरे घर को ये लूटने वाले लोग मेरी अज्ञानता और असंयम के कारण मेरे घर में घुसे हुए हैं। मैं जब तक जागृत होकर के और नहीं बैठूंगा घर में, तब तक ये घुसते रहेंगे, जैसे कि घर में सोए हुए व्यक्ति को पा करके और चोर घुसकर संपत्ति लूट ले जाते हैं, ऐसे ही मेरे आत्मा की निधि को मेरे ही अज्ञानता और असंयम के कारण ये कर्म चोर प्रवेश करके लूट रहे थे। मैं जाग गया हूं, जागने से उनका आना तो मैंने रोक लिया है, लेकिन अब जो भीतर पहले से घुसे हुए हैं उनके लिए मुझे उपाय करना चाहिए। मेरी अज्ञानता और असंयम से जो मैंने अपने परिणामों को बिगाड़ रखा है, अब मुझे उनको संभालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पंच महामृत संचरण समिति पंच प्रकार, तवल पंच इंद्री विजय धार निर्जरासार। वो जो मेरे भीतर कर्म संचित हो गए हैं और हो रहे हैं, उनके हटाने का क्या उपाय है? सामान्य रूप से तो कर्म निरंतर आते रहते हैं, अपना समय पूरा करके फल दे करके चले जाते हैं। जैसे बीज बोने पर वृक्ष लगता है, उसमें फल आते हैं, पक करके डाल से टूट कर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही मेरे भी मन वाणी और शरीर और उपयोग की मलिनता से निरंतर कर्म आते रहते हैं, मेरे साथ वे रहते हैं, अपना समय पूरा करके अपना फल देकर चले जाते हैं। इस तरह का यह जो झड़ जाना है कर्मों का, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। इस तरह के कर्मों से रहित या कर्मों से छूटने की जो प्रक्रिया है, वो तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। ये तो सब जीवों को होती रहती है कि कर्म आए रहें, अपना फल देवें और चले जावें। नहीं, तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शा। मुझे अगर अपने जीवन में वो जो शाश्वत सुख है उसे प्राप्त करना है और उस दुख से संसार के बचना है, तो एक ही उपाय है कि मैं इन आने वाले कर्मों को रोक करके और तपस्या के माध्यम से जो संचित कर्म है उनकी निर्जरा करूं। कर्मों का आना निरंतर बना रहे और फल दे करके जाते रहें, इससे काम नहीं होगा। कर्मों का आना रुके और मैं तपस्या के द्वारा संचित कर्मों को हटाऊं, ये संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो मेरे लिए कार्यकारी है, ऐसा विचार मेरे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। जैसे मेरी संपत्ति को लूटने आने वालों को रोकूं और जो पहले से लूटने घुस गए हैं उनको भी डरा धमका करके बाहर निकालूं, तब मेरी संपत्ति बचेगी, ऐसे ही मेरे आत्म स्वभाव को मलिन करने वाले ये कर्म आना रुकें और जो पहले से मेरे जीवन को मलिन बना रहे हैं उनको हटाने के लिए मैं तपस्या धारण करूं। अब वो तपस्या मन वाणी और शरीर सबसे होती है, वो तपस्या करने का भाव सबसे पहले जागृत होना चाहिए, क्योंकि तप से ही निर्जरा होगी। तो वो तप मेरे लिए उपादेय है, और संवर पूर्वक निर्जरा करनी है तो सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री है, इन सब के अंगीकार करने पर ही तप धारण करने से निर्जरा होगी। अगर कोई असंयम के साथ में और 12 प्रकार के तप भी तपे तो उसके द्वारा कर्मों की घनी निर्जरा नहीं होगी, असंख्यात गुनी निर्जरा नहीं होगी, और कारी तो असंख्यात गुनी निर्जरा होने से ही होगा। अब ये जरा समझने की चीज है कि हम असंयम के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख ली, 7 तत्व का अभ्यास कर लिया, आपापर का भेद विज्ञान हो गया, अंतरंग में बैठे हुए मिथ्यात्व का क्षय शोपसम उपसम हो गया, और इस तरह मैंने वास्तव में सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, सो उस काल में सम्यक दर्शन के एक अंतर मुहूर्त मात्र संख्यात गुनी निर्जरा होगी, उसके बाद जीवन पर्यंत निर्जरा नहीं होगी, जब तक कि मैं असंयम भाव को नहीं छोड़ूंगा और संयम या देश संयम ग्रहण नहीं करूंगा। निर्जरा के लिए, असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए या संयम पूर्वक निर्जरा के लिए तो मुझे अपने मन वाणी और शरीर को संयमित बनाना पड़ेगा, अनुव्रत और देश व्रत के माध्यम से इनके प्रति मेरे मन में रुचि जागृत होनी चाहिए। अगर मैं नहीं भी धारण कर पाऊं तो कम से कम रुचि तो मेरे मन में हो, ये भावना निरंतर चलनी चाहिए कि कब मैं अपने जीवन को संयमित बनाऊं, कब मैं सदाचार को धारण करूं, कम से कम मेरी अनंत इच्छाएं हैं जो मैं हमेशा उन्हीं के पूरे करने में लगा रहता हूं, मैं अपनी उन इच्छाओं को नियंत्रित करूं, मैं अपने मन और वाणी और शरीर इन सब को नियंत्रित करके अनुशासित करके जीऊं, ये भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए सुबह से शाम तक। भोग भोग की सामग्री के बीच भी मेरे मन में ये भाव बना रहे तब ये कहलाएगा कि हाँ निर्जरा भावना शुरू हो गई, और यह निर्जरा भावना भी संवर पूर्वक निर्जरा में कारण बनेगी। देखो कितनी भावना भाने से भी संवर निर्जरा हो, क्योंकि अनुप्रेक्षा संवर की कारण है, और हम ये निर्जरा भावना भा रहे हैं तो यह अनुप्रेक्षा भी संवर में कारण बनेगी, और उसके साथ यदि हमारे मन में भावना है कि तप भी धारण करूं, क्योंकि तपसा निर्जरा चा, तप से ही निर्जरा होती है, और इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है, ये मेरे लिए उपादेय है, मैं अपनी इच्छाओं को दिन भर में जीतूंगा, हो सकता है 100 इच्छाओं में से एक ही जीत पाऊं, लेकिन मेरे मन में तो इच्छा को जीतने का भाव, इच्छाओं से ऊपर उठने का भाव। सामान्य रूप से एक गृहस्थ सुबह से शाम तक क्या करता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता, अपने मन और इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में लगा हुआ है, और उससे थोड़ा बहुत मंदिर में बैठकर घंटे भर धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय इत्यादि करता, पूजा पाठ करता है, तो कितनी निर्जरा होती है। कहते गज स्नान वत चुंदक छिद वत, दो उदाहरण देकर के आचार्य महाराज समझाते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है। गज स्नान वत यानी जैसे हाथी नदी के किनारे पहुंच करके ढेर सारा पानी अपने ऊपर डाल लेता है और नहा करके साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन अगले क्षण लौटते समय फिर धूल अपने ऊपर डालकर पूरे पानी को कीचड़ कीचड़ कर देता है, ऐसा ही घंटे भर धर्म ध्यान करके लौटने वाला गृहस्थ 23 घंटे उसी पाप में लिप्त हो करके उसकी हुई निर्जरा को और व्यर्थ ही कर देता है। इसलिए असंयम पूर्वक किया गया महातप भी कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बनता, ये आचार्य भगवंतों असंयम पूर्वक किया गया महातप असंख्यात गुनी निर्जरा नहीं कर पाएगा, जब तक कि देश संयम या सकल संयम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक। ये निर्जरा और संवर मोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष भावना नहीं रखी, क्योंकि संवर और निजरा भावना भाने से ही मोक्ष होता है, इसलिए निजरा भावना तक तो रखी, आश्रव संवर निजरा, लेकिन मोक्ष भावना भी रख देते, कहते नहीं संवर निजरा भावना भाना ही मोक्ष भावना है, इसलिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म धारण करने से तो प्रारंभ होता है संवर का, और तपस्या करने से वृद्धि होती है निर्जरा की, और कोई व्यक्ति चाहे तो इस संवर और निर्जरा से पूर्णता को प्राप्त हो जाए, वो पूर्णता का नाम ही मोक्ष है, इसलिए अलग से मोक्ष भावना नहीं रखी। प्रारंभ संवर से, वृद्धि निर्जरा से, और पूर्णता, पूर्णता तो मोक्ष है, तो जब प्रारंभ और वृद्धि करोगे तो पूर्णता तो प्राप्त होगी ही होगी। तो प्रारंभ धर्म का प्रारंभ होता है संवर से, वृद्धि होती निर्जरा से, तो प्रारंभ संवर से होता तो संवर के कारण कौन से हैं? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा, तीन गुप्ति, पांच समितियां, दस धर्म, 22 परिषय, 12 अनुप्रेक्षा, और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम, ये धारण करने के बाद ही संवर होगा, तभी वास्तव में धर्म आएगा जीवन में, और फिर उसकी वृद्धि के लिए तपसा निर्जराता तप धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरा मन के अंदर ऐसा विचार तो ला करके देखें कैसा लगता है। अभी तो लगता है ये कर लिया हमने, ये कर लिया, अब हमने पूजा भी करी है, स्वाध्याय भी करो तो महाराज को हार भी गए थे, दोपहर की वचन का भी सुनेगी, और हमसे और का चाहत, का हम वो का करें हम, अरे का करें, नहीं भैया, इन इन चीजों के करने अकेले से नहीं होगा, मगर इन चीजों के करे बिना भी नहीं होगा, सो उनको करना भी है, लेकिन इतने में ही संतोष नहीं कर लेना, अभी तो मुझे असंख्यात गुनी निजरा के लिए उपाय करना है, और असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए ग्रस्त के लिए आसान उपाय बताऊं मैं, क्या बताऊं, आचार्य महाराज बता रहे, कहते हैं कि आसान उपाय इतना ही है कि जिन बिंब दंशने न, और नमो कार कदो असंखेज गुण सेनी निजरा जादो, भोयन सोयन पयान पच्चयान, उठते बैठते आते जाते सोते जागते खाते पीते हर अवस्था में जो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है वो निरंतर असंख्यात गुनी निर्जरा करता है, और जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करके उनकी छवि को दिन भर अपने मन में धारण करता है वो असंख्यात गुनी निर्जरा करता है, इससे आसान उपाय और नहीं हो सकता। इतना आसान उपाय दिया, क्योंकि पंच महाव्रत धारण करना तो सबके लिए सहज साध नहीं है, तो कहते सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, इनकी सबकी निर्जरा असंख्यात गुनी होती चली जाती है। हम ऐसे उपाय करें जिससे कि निर्जरा का रेशियो बढ़ता चला जाए, तो उपाय यही है कि सम्यक दृष्टि जो निरंतर अपने मन में वीतराग छवि को बसाए हुए है, और पंच नमस्कार ही या पंच परमेष्ठी ही जिसके लिए शरण है, उसकी निर्जरा शुरू होती है सामान्य जीव की अपेक्षा, उससे भी ज्यादा बढ़ाना हो उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, कहते सम्यक दृष्टि ये तो शुरुआत है, सम्यक दृष्टि श्रावक इसके बाद दो प्रतिमा धारण करेगा जब पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होगी। श्रावक के 12 व्रतों को धारण करने से और पंचम गुण स्थान होने पर, देश संयम होने पर, श्रावक के अब पूरे दिन भर घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, भोजन इत्यादि करते हुए भी, एक असंयमी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुनी नजरा होगी, ये ध्यान रखना। एक सम्यक दृष्टि जो असंयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, अंतर्मूर्त को तत्व चिंतन भी करे तो जितनी निर्जरा नहीं होगी उससे असंख्यात गुनी होगी। भोजन करते समय देश व्रत धारण करने वाले, 12 व्रतों को धारण करने वाले सदग्रस्त श्रावक के लिए, और एक सदग्रस्त श्रावक घर में अनुव्रतों का पालन करते हुए बारह व्रतों का पालन करते हुए और अगर सामायिक में लीन हो तो जितनी निर्जरा करेगा उससे असंख्यात गुनी निर्जरा महाराज आहारचर्या को निकले भोजन कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। निर्जरा का बढ़ने का कारण क्या है भाई? मेरी कषायों की कमी। सम्यक दृष्टि के गई है अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, देश वृत्ति के एक और चली गई अप्रत्याख्यान सो निजरा का रेशियो बढ़ गया और उधर महावृत्ति के तो अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान भी चली गई, एकमात्र संजुड़न कषाय है इस वजह से उसकी निजरा और अधिक बढ़ गई है। और वास्तव में तो निजरा होती है तो किसके होती है? जिसके मुंह का अभाव हो जाता है, क्षीण मुंह, बार में गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में लीन, ऐसी निर्द्रा करते हैं कि चार घातियां कर्म ही नष्ट होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्तव्य तो वही है, दृष्टि में तो मेरे वही लक्ष्य है, मैं कितना कर पा रहा हूं ये बिल्कुल जुदी बात है, लेकिन भावना क्या भावूंगा कि जो निर्द्रा का क्रम है मैं उसको धारण करूं और मैंने अपनी अज्ञानता से और इस असंयम भाव से जो संचित कर लिए हैं पाप कर्म, जिससे मेरा प्रारब्ध निर्धारित हुआ है, जिसकी वजह से मुझे संसार के सुख दुख भोगना पड़ रहे हैं, उससे बचूं, मैं क्रम क्रम से बचने का उपाय करूं। यह अगर भावना हमारे भीतर, अपन को उपायों पर चर्चा नहीं करनी है, बारह तपों के बारे में अपन बहुत अध्ययन कर चुके हैं, बहुत विचार कर चुके हैं, उस पर विचार नहीं करना। मेरे को बारह तप धारण करने की भावना बनी रहे, बात तो ये है, मेरे मन वाणी और शरीर का मैं सदुपयोग करूं ये भावना, मेरे से कोई मेरे इन प्राप्त हुई साधनों का दुरुपयोग ना हो जाए। जैसे कि बिजली हिसाब से जलाते हैं कि खर्चा नहीं बढ़ जाए, जैसे नल का पानी हिसाब से खर्च करते हैं कि खर्चा नहीं बढ़ जाए, जगह देख करके बैठते हैं कि कपड़ा खराब न हो जाए और उसमें ही जरा सा परिवर्तन हो जावे कि यह अग्निकायक जीवों के विघात का कारण है बिजली का जलाना, सो मैं इसको कम से कम उपयोग में लूं ताकि अग्निकायक जीवों की विराधना ना हो, जल संभाल करके उपयोग करूं ताकि जलकायक जीवों की विराधना ना हो, त्रस इत्यादि जीव नीचे हो सकते हैं, मैं अकेले कपड़े बचाने के लिए नहीं, जीवों को बचाने के लिए शोध करके बैठ रहा हूं, इतना नहीं कर सकतेगा। कर्मों की निजरा के ये उपाय हैं भैया, वही जरा सी उपयोग में परिवर्तन आया, दृष्टि में परिवर्तन आया, भावों में परिवर्तन आया और मन वाणी शरीर की क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। ये है संयम भाव, इतना अगर विवेक उत्पन्न हो जाए, इतना संयम भाव अपने मन में आ जावे तो निजरा घनी है और आश्रय भी रुकता है। दोनों ही चीजें होती हैं, जो संवर के कारण हैं वे निर्जरा के भी कारण हैं और निर्जरा के जो कारण हैं वे संवर में भी कारण बनते हैं। संवर और निर्जरा दोनों ही वास्तव में पूर्णता के लिए हैं, मुक्ति के लिए हैं, इसलिए मेरे लिए उपादेय हैं, ऐसा निरंतर भाव बना रहे। आश्रय और बंध से हम निरंतर दूर रहें, बचते रहें, और ये दोनों उपादेय हैं, सो इनको अपनाते रहें। इसको अपन अपनी भाषा में कहें कि भैया पुरानो लेन देन चुकता करने हैं, सुचित तो जल्दी हो जावे, सुच कर देवे और जाएं तैसे, नहीं अपनी भाषा में अपन का कहेंगे, व्यापारी की भाषा में, ये दुकान खोली है सो कर्जा लेके खोली है, मनो कब तक मेहनत करता सबसे ज्यादा दुकानदार, कर्जा चुक जावे फिर अपनी चार पैसा की भी दुकान दे तो अपनी तो कहा है, अबे तो कर्जा से पूरा सामान ले आन के अंदर वो लोन लो तो ऐसे सुख, अब ऐसे ही तो अपन ने ले रखा कर्मों का लोन ले रखा, उधारी कर्मों की बहुत है, अब बचुकता होना चाहिए। वो अज्ञानता और असंयम के कारण मैंने जो अपने जीवन में कर्म संचित कर लिए हैं वो चुकता हिसाब उसका करूंगा, तब जाकर के मुक्त हो पाऊंगा। लेन देन से मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए ये संवर पूर्वक निर्जरा, नया लेना बंद कर दिया, पुराना चुकाना शुरू कर दिया है तो चुक ही जाएगा, और नया लेते रहे और थोड़ो चुकाऊ तरह ले तो ज्यादा रहे तो न हुई हिसाब चुकता नहीं होगा। इतनी सी सीधी सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बाबा जी थे, प्रसिद्ध है वो उदाहरण, शायद पहले भी मुझे ध्यान नहीं आपने सुना हो, पर इस अवसर पर अपन को याद कर लेना चाहिए। और उस उदाहरण के पहले एक चीज और याद आ गई, हाँ हो जाता है ऐसा, वो है 1980 की बात। जो उस समय तो हम दीक्षा हो करके छुल्लक वो तीन ही महीना हुए थे, सागर में आगम वाचना शुरू हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में, पहली वाचना थी षटखंड आगम की, विद्वान थे, गर्मी का समय था और सब लोग छत पर ही रात्रि में विश्राम करते थे। अब मौसम बिगड़ने में देर थोड़ी लगती, तो रात्रि में जो है और तेज आंधी पानी बहुत आ गया, आचार्य महाराज तो अपने ध्यान में छत पर ही पाटे पर लीन है। अब सबको बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ज्यादा देर तक ऐसे आंधी पानी में बैठे रहेंगे तो अस्वस्थ होने में, शरीर है ये तो, आपको मन कितो मजबूत हो वे सुरह आवे, मनो जो तो है सुई खो तो है, हुई हुई गई नहीं हुई, तो अब उपाय करना चाहिए, क्योंकि अनुभव था 1985 में या 1986 की शुरुआत में, नहीं 1975 या 76 की शुरुआत में, 18 दिसंबर 1975 को तो सोनागिर में दो छुल्लक दीक्षाएं देकर के आचार्य महाराज सतना होते हुए, कटनी होते हुए और कुलवा कुमारी के पहाड़ से चढ़ के और उतरे थे छह घड़िया पे किशन कुंडलपुर में। सो वहां गेट बंद होने से शाम को और वहीं आकर के बैठ गए थे, सारी रात बैठे रहे, पानी पड़ता रहा जिससे अस्वस्थ हुए थे। फिर तो वो सबके दिमाग में था, जो भी सागर के लोग थे उनको मालूम था। तो नहीं भाई अपन तो उपाय करेंगे, अब डर रहे थे सब। हम लोगों ने कहा डरो, आप डरोगे श्रावक हो, हम भी अब श्रावक ही हैं, छुल्ला को ये तक भी श्रावक ही कहलाते, उत्कृष्ट श्रावक, आप जाओ हम उन्हें करें ले। तो दो तीन छुल्लक जी ने मिलके अब आचार्य श्री से कहा, कहें बैठी रहो आप अपनी सामायिक करो, हमारा काम हम करेंगे। सो पाटा धीरे से उठाओ और भीतर कमरे में रख दिया, बस और क्या करना, कमरा बाजू में था, छत बाहर थी, से उठा करके रख दिया। अब सवेरे बैठी रहे आचार्य श्री पूरी रात वैसे ही, सुबह भक्ति के बाद क्या बोले कि ये नए नए छुल्लक जी बने हैं, अभी इनको निर्जरा करने में रुचि नहीं है, मेरे जीवन में निर्जरा का अवसर आया था सो वो भी इनने छुड़ा लिया, हंस करके ऐसा कह करके, और निर्जरा के प्रति जो मन में उत्साह होना चाहिए वो प्रकट कर दिया। क्या ऐसा ही उत्साह अपने मन में हो सकता है? ये घटना इसलिए कह रहा हूं कि निर्जरा करने में हमें कष्ट नहीं मालूम होना चाहिए, बल्कि निर्जरा होती जान करके और अच्छा अनुभव होना चाहिए कि अच्छा हुआ मेरे लिए। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि निर्जरा तब होगी जब संकलेश न हो। हाँ, तपस्या उत्तय करना जिससे संकलेश न हो, संकलेश होने लगे तो कुछ तो घाटे का सौदा है, फिर निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का बंध घना होगा। तो आनंद पूर्वक तपस्या करें अगर हम बिना संकलेश के, जितनी जिससे बने, तब देखिएगा कि वो इससे आसान निद्रा का उपाय नहीं, कर्मों से बचने का सहज उपाय है। और दूसरा जो उदाहरण हिसाब किताब चुकता का है वो एक बाबा जी का है, मैं वो सुना रहा था उसके बीच में आचार्य महाराज की स्मृति। आचार्य महाराज की स्मृति अलग से थोड़ू करने पड़ती है, हाँ वो तो प्रति क्षण जो है वो ध्यान अपने आप बना ही रहता है ऐसे अवसर पर। तो वो बाबा जी खड़े थे जंगल में, ग्वाला अपनी गायें चराने पहुंचा तो उसने वहीं अपनी गायें छोड़ दी, शांत है वातावरण। अब क्या हुआ कि उसको भोजन करने जाना था, तो उसने सोचा कि अब कोई तो है नहीं इतने पे, वो गायें सब चल रही हैं और बाबा जी खड़े हैं। तो बाबा जी से कह दिया उसने कि बाबा जी रखाए रही, हम भोजन करके आ रहे, और क्या कहेंगे, कोई नहीं है तो बाबा जी हैं। अब महाराज तो अपने ध्यान में लीन है, आत्मस्थ हैं, ना उनने गायों को आते देखा, ना उस ग्वाले ने क्या कहा ये सुना। और जब ग्वाला अपने शाम को भोजन इत्यादि से निवृत्त हो करके, नहीं, जब दोपहर में भोजन इत्यादि से निवृत्त हो करके लौटा तो देखता है कि वहां तो सब गायें है ही नहीं। हुआ ये था कि वो गायें चरते चरते भीतर घने जंगल में और घुस गई। अब ये सब में यहां वहां ढूंढे, बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने तो पहले भी नहीं सुना था, सो अभी भी नहीं, चुपचाप है वो तो।